आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आत्म प्रकाश पाए हमारे साथ है मधुबन से, और उस हमारे साथ 1 घंटे रहेंगे, क्लास कराएंगे। सो बहुत अच्छा लगता है कि मधुबन हमारे साथ जुड़ गए। तो सभी मेरे ख्याल में आतम भाई को जानते होंगे, फिर भी थोड़ी उस उनकी बात बताते कि वो बाबा के ज्ञान में आए 1972 से कोर्स किया, फिर 1976 मधुबन सेवा में उस वो समर्पण हुए। तो उसके बाकी एक तो वो गॉड मेंटलिस्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ नागपुर से, तो बहुत उसके पास शारीरिक भी ज्ञान है, स्पिरिचुअल और फिजिकल दोनों एजुकेशन है उसमें, बहुत उत्तम है। और फिर भी हम जानते हैं कि ज्ञान मार्ग में बहुत बहुत उनने उन्हें उच्च पद पा लिया है, तो वो हमारे साथ आज शेयर करेंगे। तो वो 90 कंट्रीज में ट्रेवल किया है, वहाँ ज्ञान का प्रचार किया, मेडिटेशन सिखाया, और अभी वर्तमान समय तो मधुबन में है। और आप जानते हो तीनों वो है ना कैंपसेस, ज्ञान सरोवर, शांतिवन और पांडव भवन, वहाँ के टोले डिपार्टमेंट के वो मुख्य है, हेड है, और सभी उसकी देख रेख में सभी टोलियां बनती है, जो हम समय प्रति समय हमको लंदन में मिलती है, तो वो भी हमारा भाग्य है। तो थैंक यू आत्म प्रकाश भाई, आज हमारे साथ आपने जुड़ गए, तो आप हमारे साथ शेयर करेंगे। वन थिंग आई वांट टू से इन इंग्लिश कि प्लीज इफ यू आर गोइंग टू ज्वाइन द ट्रांसलेशन, टैप इन द ग्लोब एंड गो टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। थैंक यू। ओम शांति।
ओम शांति। आदरणीय जयंती दीदी जी, आदरणीय गीता दीदी जी और आदरणीय बीना दीदी जी और जो भी भाई बहने आज के सत्र से जुड़े हुए हैं, उन सभी को मधुबन तपोभूमि से याद प्यार स्वीकार। आज का बहुत अच्छा टॉपिक है मन बुद्धि की स्वच्छता। मन बुद्धि की स्वच्छता बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि संगम युग है चढ़ती कला का युग। इसमें चढ़ती कला की अनुभूति कराने के लिए मन और बुद्धि का मुख्य रोल है, क्योंकि आत्मा रूपी माँ के मन बुद्धि ये दो बच्चे हैं। द्वापर युग से ये माया के संग में आते हैं, और जो भी हमारे पास खजाने होते हैं वो सारे खजाने गवा देते हैं, आत्मा का दिवाला निकल जाता है। अभी इन्हीं दोनों बच्चों को हमें स्वच्छ बनाना है और स्वस्थ बनाना है, इनको सुधारना है, तो उनकी मदद से उनको बाबा के संग में रख कर पुनः सारे खजाने हमें प्राप्त करने हैं, जो हमारे संस्कार होते हैं उनका भी गहरा प्रभाव मन बुद्धि पर पड़ता रहता है। संगम युग में हमें हर रोज ज्ञान और योग की पालना मिलती है, उसका प्रभाव सकारात्मक आत्मा पर पड़ता है। तो ये दोनों शक्तियां मन और बुद्धि अच्छा काम करते रहते हैं, लेकिन पालना में थोड़ी सी भी हमारी कमी कमजोरी रहती है तो पुराने जो संस्कार है वो मन बुद्धि पर प्रभाव डालते हैं। परिणाम स्वरूप हमारी स्थिति हलचल में आती है। इसलिए पुराने संस्कारों का जो आत्मा में किचड़ा है उसको भस्म करना होगा, तभी जो हमारे अच्छे संस्कार है, दिव्य संस्कार है, उनका प्रभाव मन बुद्धि पर पड़ता रहेगा। अभी मन बुद्धि की स्वच्छता के लिए सर्वप्रथम हमें मन को स्वच्छ करना जरूरी है। मन में चार प्रकार के संकल्प चलते हैं। अगर हम सारे दिन भर में थॉट्स पैटर्न को, संकल्पों की चेन को चेक करते हैं तो चार प्रकार के संकल्प हमारे मन में चलते रहते हैं। पहला प्रकार, कर्म करने के लिए संकल्प चलना, सारे दिन भर में अपने लिए, सेवा के लिए, लौकिक अलौकिक जो भी हम कर्म करते हैं उसके लिए संकल्प करना। दूसरा है सकारात्मक अर्थात अच्छे संकल्प चलना, पॉजिटिव थॉट्स चलना। और तीसरा है व्यर्थ संकल्प चलना। किसी भी बात के लिए बार बार हम जब सोचते हैं तो वो व्यर्थ संकल्प कहलाते हैं, उससे आत्मा की बहुत एनर्जी वेस्ट होती है, नष्ट होती है। और चौथा है प्रकार, नकारात्मक संकल्प अर्थात नेगेटिव संकल्प चलना। तो अभी हमें मन को स्वच्छ करना है तो उसके लिए क्या करना होगा? अशुद्ध संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करना जरूरी है। हमारे मन में किसी न किसी विकार के प्रभाव से इम्प्योर थॉट्स, अशुद्ध थॉट चलते हैं, तो उसके लिए बाबा ने मास्टर की बताई है, आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि पक्की करना। बाबा कहते हैं भाई बहन के भी दृष्टि ना हो, उससे भी ऊपर हमें उठना है। भाई बहन की दृष्टि होते हुए भी अशुद्ध संकल्प चलने की संभावना होती है, क्योंकि इस शरीर भी पति तत्व से बना है, आत्मा भी में भी इम्प्योरिटी है, इसलिए इम्प्योर संकल्प चलने की संभावना होती है। इसलिए बाबा कहते हैं इससे ऊपर उठ जाओ, मैं ज्योति बिंदु आत्मा, ये ज्योति बिंदु आत्मा, भाई भाई, तो सिमिलर पोल्स रिपल्सन, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट। आत्मा भाई भाई समझने से पवित्रता की स्थिति हमारी बहुत अच्छी होती है। मन हमारा स्वच्छ होता है, अपवित्र संकल्प खत्म होने लगते हैं। अभी दूसरा, व्यर्थ संकल्पों को भी हमें समाप्त करना होगा। तो व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तन करना जरूरी है। कैसे करेंगे? व्यर्थ से, बाबा ने कहा व्यर्थ भी संकल्प, ये भी इम्प्यूरिटी है, मन की अशुद्धता है। तो उसको निकालने के लिए तीन युक्तियां है, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने के लिए। पहली युक्ति, आत्मिक स्थिति मेंटेन करके जो सामने आता है उसके भ्रुकुटी में फुल स्टॉप लगाना, आत्मा का बिंदु लगाना। फुल स्टॉप लगाने से व्यर्थ संकल्पों को फुल स्टॉप स्टॉप लगता है, नहीं तो ये भाई का नाम ये है, ये भाई ये काम करता है, ये इसमें ये गुण है, इसमें ये अवगुण है, ये यहाँ का रहने वाला है, बिना मतलब हमारे मन में 5-7 संकल्प व्यर्थ चल पड़ते हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए आत्मा आत्मा, भाई भाई, एक पिता की संतान, व्यर्थ को फुल स्टॉप लगता है। दूसरी युक्ति, ड्रामा का फुल स्टॉप लगाना सीखे, बिंदु बनकर बिंदु लगाना सीखे, क्वेश्चन मार्क ना हो हमारे मन में। ज्ञान ड्रामा का हमारे पास है लेकिन उसको यूज करना है, फुल स्टॉप लगाना है, नथिंग न्यू का पार्ट पक्का करना है, तो धीरे धीरे व्यर्थ समाप्त हो जाता है, किचड़ा व्यर्थ का खत्म होने लगता है। और तीसरी युक्ति, पानी इधर बह रहा है नदी का, नुकसान कर रहा है, पानी के फ्लो को प्रवाह को दूसरे तरफ डाइवर्ट करना है, खेती के तरफ बगीचे के तरफ, तो वो पानी काम में आएगा। तो मन में व्यर्थ संकल्पों का जो प्रवाह चलता है उसको समर्थ में परिवर्तन करने के लिए आवश्यकता है मनन चिंतन बढ़ाते रहना। मनन चिंतन ज्ञान, बाबा के जो ज्ञान रतन है, पॉजिटिव थॉट्स हैं, समर्थ संकल्प है, वो बढ़ते जाएंगे तो व्यर्थ संकल्प धीरे 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 मिटने लगेगा, कम होने लगेगा। तो अशुद्ध संकल्पों से फ्री, व्यर्थ संकल्पों से फ्री, तो मन हमारा साफ होगा, क्लीन होगा, स्वच्छ होगा। तो ऐसा मन, मन मना भव का मंत्र का जाप करने के लिए तैयार रहता है। अभी बुद्धि की सफाई के लिए जो अशुद्धि है उसको हटाने के लिए बाबा ने मुरली में कहा है कि शक्तिशाली योग की आवश्यकता है। तो शक्तिशाली योग की आवश्यकता है, हम हर रोज योग का अभ्यास करते हैं, सेंटर पर जाते हैं, मुरली सुनते हैं, योग का अभ्यास करते हैं, हर रोज करते हैं, फिर भी कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है, हमें फीलिंग आ जाती है, हमें थोड़ा सा लाइट गुस्सा आता है, रोब आता है, अभिमान आता है, इसका मतलब आत्मा में वो विकारों के अंश का अलाय कचड़ा गंदगी अभी भी आत्मा में बाकी है। अभी बुद्धि को साफ करने के लिए हमें बुद्धि के बारे में डिटेल जानकारी होना जरूरी है। क्योंकि स्वच्छ बुद्धि बनाना बहुत जरूरी है। कहते हैं जैसी बुद्धि वैसी आत्मा की शुद्धि होती है। जैसी आत्मा की शुद्धि वैसे खजानों की वृद्धि होती है। जैसी खजानों की वृद्धि वैसी आत्मा सिद्धि स्वरूप बनती है। इसलिए बुद्धि पर बहुत मदार होता है। इसलिए बुद्धि को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना बहुत जरूरी है। तो अभी मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि बुद्धि के चार काम हैं। बुद्धि को स्वच्छ बनाते हैं ना, ये चार काम अच्छी तरह से होते रहेंगे जो हमारी चढ़ती कला में मदद करते हैं। पहला काम है बुद्धि का आत्मा की तीसरी आंख बुद्धि कहलाती है, दिव्य नेत्र, बुद्धि रूपी नेत्र हम कहते हैं, देखना, ये पहला काम है। दूसरा काम है बुद्धि का जजमेंट लेना। कभी भी हमारे सामने बातें दो होती है तो जजमेंट लेने के काम बुद्धि करती है। और तीसरा काम मेमोरी का काम बुद्धि करती है। जब मैं 94 में पहली बार लंदन आया था तो जानकी दादी जी ने मुझे बहुत प्यार किया, बहुत अच्छी पालना दी, अभी भी मुझे याद है। वो कहाँ छिपा के रखी थी मैंने इन्फॉर्मेशन? बुद्धि रूपी मेमोरी में। तो तीसरा काम मेमोरी का है। चौथा काम आत्मा का दिल बुद्धि कहलाती है। जब भी दिल की बात आती है तो हमारा हाथ यहां जाता, मैं दिल से कह रही हूं, दिल से कह रहा हूं, ये हार्ट पर हाथ जाता है हमारा। ये हार्ट तो शरीर का पार्ट है, ये तो ब्लड को पंपिंग करता है, ये दिल नहीं है। आत्मा का दिल उसको कहते हैं जो प्यार को एक्सप्रेस करने वाली शक्ति होती है, उसको दिल कहते हैं। तो वो बुद्धि ही दिल का काम करती है। इसलिए कहते हैं पांडव प्रीत बुद्धि थे, उनके दिल में बुद्धि में परमात्मा के प्रति प्यार था। कौरव विपरीत बुद्धि थे, उनका प्यार नहीं था। इसका मतलब बुद्धि दिल का आत्मा का दिल का काम करती है। बाबा के दिल में बैठना अर्थात ऐसा कुछ हम काम करें जो बाबा हमें अपनी बुद्धि में जगह दे, बिठा दे। इसलिए दिल से याद करना है तो बुद्धि से याद करना है। तो माया बुद्धि पर ही वार करती है। क्यों? क्योंकि बुद्धि परमात्मा से कनेक्शन जोड़ती है। तो हमें क्या करना है, बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? मेरी बुद्धि में इम्प्यूरिटी है, माना मेरी आंख क्रिमिनल है, किसी देहधारी से लगाव होना, किसी के नाम रूप में फंसना, ये है बुद्धि की इम्प्यूरिटी। तो बुद्धि इम्प्योर जब होती है तो कमजोर होती है, इधर उधर भटकती है। तो इसलिए हमें बुद्धि को स्वच्छ बनाना जरूरी है। लेकिन बुद्धि का काम दिल भी कहते हैं, तो हमें साफ दिल को साफ दिल बनाना है। जानकी दादी जी हमेशा कहते थे, दिल साफ तो मुराद हासिल, बुद्धि दिल जो है बुद्धि का ही पार्ट है, बुद्धि का ही काम है। तो मुराद हासिल माना हम अपने मंजिल को हासिल कर सकते हैं अगर दिल हमारा साफ है। तो दिल मेरा साफ नहीं है ऐसा कहते हैं कभी कभी, क्योंकि किसी के अवगुण हमारे दिल में रहते हैं, किसी का जो भी अपवित्रता हमारे दिल में होती है, तो ये बुद्धि को इम्प्योर बनाते हैं, बुद्धि को स्वच्छ नहीं बनाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी बुद्धि को साफ करना है तो किसी का अवगुण अपने बुद्धि में नहीं रखना है, किसी की कमी कमजोरी बुद्धि में नहीं रखना है। उसकी कमी से वो खुद ही परेशान है, अब उसके कमी को हम अपने बुद्धि में रखें, अपने दिल में रखें, और उसका बोझ सिर पे लेके घूमते रहे, तो ये यथार्थ नहीं है, ये बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी नहीं है। इसलिए हमें दिल साफ रखना है और बुद्धि को भी हमें अच्छी तरह से स्वच्छ बनाना है। तो अभी बुद्धि को स्वच्छ बनाना अगर है तो बाबा ने स्पष्ट कहा है कि अंदर जो कचरा है उसको खत्म हमें करना है, तो उसके लिए हमें मन और बुद्धि को योगाभ्यास में ये काम करते हैं, मन बुद्धि योगाभ्यास में काम करती है। तो मन और बुद्धि के बारे में 5 बातें अगर हम जानते हैं तो योग भी हमारा अच्छा लगेगा, योग अच्छा लगेगा तो योग अग्नि प्रज्वलित होगी, योग अग्नि प्रज्वलित होगी तो मन बुद्धि स्वच्छ बनती जाएगी। तो इसके लिए योग बाबा से जोड़ने के लिए हमें मन बुद्धि के बारे में 5 बातें जानना जरूरी है। मुझे ये 5 बातें जब प्राप्त हुई तो मेरा योग बहुत आगे अच्छा बढ़ता गया। तो अभी 5 बातों में से पहली बात, मन हमारा कैसा हो, मन शांत हो, शीतल हो और हल्का हो, ऐसा मन मन मनाभो का मंत्र जाप करता रहता है। बुद्धि कैसी हो, एक्टिव हो, अलर्ट हो और फ्रेश हो, एक्टिव अलर्ट और फ्रेश, ऐसी बुद्धि निरंतर योग में काम करती रहती है। तो अभी दूसरी बात, इन दोनों शक्तियों का आपस में बहुत क्लोजनेस है, इसलिए दोनों शक्तियों में अंतर क्या है ये हमारे सामने क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों का इसमें कंफ्यूजन होता है मन और बुद्धि में, इसलिए योग कठिन लगता है। क्लियर, जैसे ये मेरा हाथ है, ये मेरा कान है, ये क्लियर है मुझे, तो ऐसे आत्मा समझने के बाद ये मेरा मन है, ये मेरी बुद्धि है, ये क्लियर पिक्चर होने से ही उनको हम स्वाप करते जाएंगे, स्वच्छ बनाते जाएंगे। तो बुद्धि कौन सी चीज शक्ति है, मन कौन सी शक्ति है, तो मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं। क्या आपने जानकी दादी जी को देखा है? प्रश्न पूछते ही दादी जी का पिक्चर आपके सामने आता है। दूसरा प्रश्न पूछता हूं, दादी जी कैसी थी, दादी जी के बारे में कुछ विशेषताएं बताएं, फिर आप मुझे एक एक सोच सोच के बताते जाएंगे। दादी जी बहुत अच्छे थी, माँ की तरफ प्यार देती थी, ज्ञान में बहुत गहराई थी, जो भी है। तो देखने वाली शक्ति बुद्धि है, सोच के मुझे बता रहे थे, सोचने वाली बुद्धि मन है, शक्ति। देखने वाली बुद्धि, सोचने वाला मन, ये क्लियर पिक्चर इसमें है। अब तीसरी बात, इन दोनों शक्तियों में रिलेशन क्या है, कनेक्शन क्या है। बुद्धि मन का बॉस है, बुद्धि मन का कंट्रोलर है, बुद्धि मन का ऑर्गेनाइजर है, बुद्धि मन का प्लानर है, बुद्धि मन का इंडिकेटर है। होल एंड सोल बुद्धि ही है, मन उसका केवल फॉलोअर है। इसलिए बुद्धि योग कहते हैं, योग में मेन रोल बुद्धि का होता है, इसलिए इसका नाम बुद्धि योग कहते हैं। चौथी बात, इन दोनों शक्तियों को योग में कैसे यूज करें। जब योग में बैठते हैं, आत्मा को देखें, आत्मा को अनुभव करें, उसके बाद बुद्धि रूपी नेत्र परम धाम में बाबा पर एकाग्र करें। बाबा को बुद्धि से देखना माना, बाबा से कनेक्शन जुड़ जाना। अब बुद्धि थोड़ी कमजोर है और बुद्धि थोड़ी इम्प्योर हो चुकी है, इसलिए इम्प्योरिटी की तरफ उसका आकर्षण होता है, दुनिया के तरफ, देहधारियों के तरफ, वस्तुओं के तरफ। तो हमें क्या करना है, चेक करना है और उसको चेंज करना है, बाबा पर बिठाना है। चेक इट एंड चेंज इट, पुट इट ऑन बाबा। तो ऐसा अभ्यास करते करते योग में एकाग्रता हमारी बढ़ती है। पांचवी बात है, इन दोनों शक्तियों को माया दुश्मन से सेफ रखना जरूरी है। माँ क्या करती है, अपने बच्चों को सेफ रखती है सारा दिन में, और उनको अच्छी खुराक खिलाती, हेल्दी रखती। तो इन दोनों शक्तियों को दुश्मन से सेफ रखना है, उसके लिए क्या करना है, बाबा के घर में जाते हैं, मुरली सुनते हैं, योग करते हैं, ईश्वरीय नशे की अनुभूति होती है, ईश्वरीय नशे का कवच सारे दिन भर में पहनकर रखना है, तो मन बुद्धि सेफ रहेगी। सेफ रहेगी तो वो काम करेगी योग में। तो अभी इन पांच बातों को जानने के बाद शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाने के लिए तीन बातों पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि समय की पुकार है। शक्तिशाली योगाभ्यास करने का बाबा ने स्पष्ट इशारा दिया है। अभी साधारण योगाभ्यास करने का समय समाप्त हो चुका है, अभी जो समय चल रहा है शक्तिशाली योगाभ्यास करने का, ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास करने का चल रहा है, क्योंकि थोड़ा समय बाकी है और थोड़ा समय में हमने बहुत कुछ खजाने बाबा से लेने हैं, और हमारे मन बुद्धि को भी स्वच्छ बनाना है। जो मन बुद्धि पर कट लगी हुई है, इम्प्योरिटी लगी है, वो भी हटाना है, खत्म करना है। तो वो शक्तिशाली योग से ही संभव होगा। हम मधुबन निवासी 87 में मेडिटेशन हॉल में बाप दादा से मिल रहे थे। मुरली के बाद सीधा बाबा से एक प्रश्न पूछा, बाबा मेरा योग शक्तिशाली है या नहीं, कैसे समझे। तो बाबा ने कहा, शक्तिशाली योग की दो निशानियां होती है। एक तरफ शक्तिशाली योग में योग अग्नि की तरह अनुभव होता है, और उस अग्नि में विक्रम भस्म हो रहे हैं ऐसा अनुभव होता है। दूसरे तरफ हल्केपन का और खुशी का अनुभव होता है। हल्केपन का क्यों अनुभव होता है, क्योंकि पापों का बोझ घटने लगता है। खुशी का अनुभव क्यों होता है, क्योंकि हम आगे बढ़ते हैं, लक्ष्य की ओर, मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं, इसलिए खुशी होती है। तो ऐसी दो प्रकार की अनुभूतियां हमें योगाभ्यास में करना है। इसलिए तीन बातों पर दिल से अभ्यास करना जरूरी है। पहली बात, शक्तिशाली योगाभ्यास के लिए बहुत गहराई की और बहुत शक्तिशाली आत्म अनुभूति को बढ़ाते रहना जरूरी है। बहुत गहराई की आत्म अनुभूति अर्थात आत्मा को स्पष्ट देखें और आत्मा की स्थिति में अनुभव हो जाए, उसकी गहराई हमें डेप्थ क्वालिटी ऑफ सोल कॉन्शियसनेस, डेप्थ ऑफ सोल कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है। तो जितना बढ़ाते जाएंगे देह का भान घटता जाएगा और आत्मा का भान बढ़ता जाएगा। हमारा लक्ष्य क्या है? 100% सोल कॉन्शियस, 0% बॉडी कॉन्शियस, ये हमारा लक्ष्य है। तो जितनी गहराई आत्म अभिमानी स्थिति की होगी उतना शक्तिशाली योग हमारा होता है। और पावरफुल आत्म अनुभूति अर्थात जब हम अमृत वेले या नुमा शाम के समय योग में बैठते हैं, उस समय बाबा के बाजू में बैठते समय हमारे मन की बैठक शक्तिशाली हो। कैसे? बाबा सर्वशक्तिवान है तो मैं भी मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। बाबा सर्वशक्तिवान है और मैं साधारण आत्मा हूं, इस स्थिति में बैठेंगे तो आत्मा रूपी बल्ब का वोल्टेज बहुत थोड़ा होगा, कम होगा। और उस परिस्थिति में हम बाबा जो स्पिरिचुअल पावर हाउस है उनसे अपार शक्तियां खींच नहीं सकेंगे, ग्रहण नहीं कर सकेंगे। आत्मा रूपी बल्ब का वोल्टेज पावरफुल होगा। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी आत्मा हूं मैं, मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूं मैं, शक्तिशाली आत्मा हूं। इस स्थिति में बैठेंगे तो बाबा जो पावर हाउस है, स्पिरिचुअल पावर हाउस है, उनसे बहुत शक्तियां हम ग्रहण करेंगे और शक्तिशाली योग की अनुभूति हमें होगी। ये पहली बात। दूसरी बात, शक्तिशाली योगाभ्यास के लिए बहुत गहराई की और बहुत शक्तिशाली परमात्म अनुभूति बढ़ाते रहे। बहुत गहराई की परमात्म अनुभूति अर्थात परम धाम में बाबा के पास बहुत नजदीक जाके बैठें और बाबा के स्वरूप को बहुत समीपता से देखें कि बाबा का कैसा गजब का स्वरूप है, बाबा का मन कितना प्योर है, बहुत सुत प्रधान संकल्प क्रिएट करता है, बुद्धि कैसी है, विशाल बुद्धि है, सारे विश्व के कल्याण के लिए बाबा सोचते हैं, देखते हैं, और संस्कार कैसे, बहुत रॉयल है, जेंटल है, नोबल है। तो ऐसे समीपता से बाबा को देखना है, गहराई से बाबा को देखना है और बाबा के पर्सनैलिटी को यथार्थ रीति से समझना है। शक्तिशाली स्वरूप बाबा का अर्थात आप सोचो सारे विश्व की आत्माओं रूपी बैटरियों को परमात्मा चार्ज करते हैं, कितने शक्तिशाली होंगे वो। आप सोचो बाबा बिंदु है लेकिन उस बिंदु में 7 सिंधु अर्थात सागर समाये हुए हैं, शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, में से 7 सागर समाये हुए, कितनी पावरफुल वो बिंदु होगी। हमने बाबा कह के ऑर्डिनरी करते, वो तो मेरा बाबा है। अरे बाबा तो है लेकिन कौन सी वो अथॉरिटी है, हाईएस्ट अथॉरिटी है और सर्वशक्तिवान है, शक्तियों का सागर है बाबा। तो अर्जुन ने कहा है कि परमात्मा सर्वस्वरूप, ये जो सूर्य है ना साकारी दुनिया का, इस सूर्य से हजारों गुना तेजोमय है, ऐसा कहा, वर्णन किया। तो हजारों गुना तेजोमय तो नहीं है, लेकिन हजारों गुना शक्तिशाली जरूर है, क्योंकि ये जो साकारी दुनिया का सूर्य है, ऐसे हजार सूर्य भी वो पैदा कर सकता है, इतनी पावर उनमें है। सारे तीनों लोगों की कारोबार उसके हाथ में है, उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। बाबा ने कहा है, मैंने हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट दिया हुआ है, सभी कठपुतलिया है इस रंगमंच पर, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। जैसा वो कराता है वैसे हम कर रहे हैं, मानो कितनी पावरफुल हस्ती होगी। तो कहने का मतलब है, ऐसा पावरफुल स्वरूप हमें देखना है और अनुभव करना है। तीसरी बात, शक्तिशाली योगाभ्यास करने के लिए परमात्म प्यार को बढ़ाने की आवश्यकता है। आप कहेंगे हमारा तो प्यार बाबा से है भाई, इसमें कोई संदेह नहीं, जरूर है, लेकिन प्यार हो तो हमारी दादी हो जैसा, उनकी रग रग में केवल परमात्म प्यार। जब दादी जी, जानकी दादी जी डायमंड हॉल के स्टेज पर बाबा से मिलती थी, बाबा उनको बाहों में समा, और दादी भी बाबा को अपनी बाहों में समा लेती थी। क्या था उनके पास, केवल उनके रग रग में परमात्म प्यार, इसलिए खुदा भी उन पर पीड़ा था, ऐसा प्यार हो हम बाबा के साथ। तो प्यार एक ऐसी दुनिया में चीज है, शक्तिशाली पावरफुल मैग्नेटिक पावर है, जो बाबा में और हमारे में हजारों मीलों की दूरी है। उस दूरी को समाप्त करके आमने सामने ही नहीं, लेकिन कंबाइन स्थिति का अनुभव ये प्यार कराता है। बाबा कहते हैं, जब तक लीन नहीं तब तक आत्मा क्लीन नहीं बन सकती है, स्वच्छ नहीं बन सकती है। लीन बनना होना माना प्यार के सागर में डूब जाना, खो जाना, समा जाना। तो आत्मा में जो भी कचरा गंदगी है वो सागर में समा जाती है। तो बाबा से जब कंबाइन हो जाते हैं, तो एक तरफ बाबा प्यार के सागर है, तो दूसरे तरफ शक्तियों के सागर भी है। तो लवफुल याद, पावरफुल याद में ऑटोमेटिक परिवर्तन होती है, और जब ऐसी पावरफुल याद में स्थित होते हैं, तो ऐसा अनुभव होता है कि मेरे विक्रम पिछले जन्मों के भस्म हो रहे हैं, ऐसी अनुभूति हमें होती है। उसमें कोई संकल्प नहीं चलता है, लेकिन एक्सपीरियंस होता है, फीलिंग होता है कि आई एम रिसीविंग ट्रिमेंडस पावर फ्रॉम बाबा, आई एम रिसीविंग एंड रिसीविंग पावर फ्रॉम बाबा, एंड इन द फायर ऑफ योगा माई सेंस आर बर्निंग अवे विद इन नो टाइम। ऐसी फीलिंग हमें उस समय होती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, ऐसे शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाते जाना है। अभी देखो मधुबन में चारों तरफ भट्टियां ही भट्टियां चल रही है, मानसरोवर में भट्टी, ज्ञान सरोवर में भट्टी, पांडव भवन में भट्टी, और यहाँ डायमंड हॉल में भट्टी, सब बाबा के बच्चे बहुत रुचि से आ रहे हैं, बहुत दिल से मेहनत कर रहे हैं, अच्छे अनुभव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि योगाभ्यास में अनुभव बहुत गहराई के होना बहुत जरूरी है, क्योंकि योग के सब्जेक्ट में हमारी मास्टरी होना चाहिए, कमांड होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो रेस है वो योग में है। कितना अच्छा भाषण कर रहे उसमें नहीं है, कितनी अच्छी धारणा कर रहे उसमें भी नहीं। सभी धारणा करते, राम सीता भी धारणा मूर्त थे। कितनी अच्छी सेवा कर रहे उसमें भी रेस नहीं, उससे तो हमें दुआएं मिलती है, लेकिन उस तीनों सपोर्टिंग फोर्स से योग हमारा आगे बढ़ता है। रेस हमारी योग में है, और ये मन और बुद्धि, ये दोनों मेन एक्टर इसमें है। ये दोनों अगर बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं तो हम बहुत फास्ट स्पीड मेंटेन कर सकते हैं इस रेस में। तो इन दोनों शक्तियों की बहुत आवश्यकता है स्वच्छ करने की और स्वस्थ बनाने की। स्वच्छ भी हो और स्वस्थ भी हो, हेल्दी। कहते हैं खुशी आत्मा की सबसे बड़ी प्राक है। तो मन बुद्धि खुशी में रहे, ज्ञान रत्नों की खुराक खाते रहे, भोजन खाते रहे, तो आत्मा शक्तिशाली होगी, मन और बुद्धि शक्तिशाली होगी। तो ऐसे शक्तिशाली मन और बुद्धि योग में बहुत अच्छी तरह से काम करती जाएगी। इसलिए आत्मा की जो क्वालिटी है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ये बुद्धि पर निर्भर होती है। इसलिए मेरी बुद्धि स्वच्छ तो हो, लेकिन क्लीन हो, क्लियर हो, प्योर हो, पावरफुल हो, डिवाइन हो, फार साइटेड हो, तो योग में हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। सारे दिन भर में हमें योग का चार्ट रखना है और बहुत आगे बढ़ना है। तो मन शुद्ध होगा तो मन-मना भाव का जाप करता रहेगा, बुद्धि यथार्थ निर्णय लेती रहेगी, जिससे उन्नति करते करते हम संपूर्णता की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखना है, बुद्धि को क्लीन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि बाबा कहते हैं मैं जिनकी बुद्धि क्लीन होगी और क्लियर होगी, क्लीन माना फ्री फ्रॉम डस्ट, क्लियर माना नॉट एंगेज, फ्री, तो ही मैं स्पेशल टचिंग्स बच्चों को दूंगा, मैं स्पेशल बच्चों को गाइड करूंगा। तो इसलिए मन और बुद्धि को सदा स्वच्छ रखें, इम्प्योरिटी का डस्ट उन पर न लगे, और अच्छी तरह से वो हेल्दी रहेंगे तो योगाभ्यास में बहुत हम आगे उन्नति करते रहेंगे। तो मैं समझता हूं अभी आपको ये क्लियर हुआ होगा कि बुद्धि को मन को कैसे स्वच्छ बने। तो अभी हम 15 मिनट के लिए एकदम पावरफुल योग का अभ्यास करने जा रहे हैं। तो ठीक है ना दीदी, बराबर है?
हाँ ठीक है आतम भाई जी।
अच्छा है ना? तो अभी आप म्यूजिक बजाएंगे वहीं से और मैं कमेंट्री यहां से करूंगा।
हाँ तो हम वेरी स्लो म्यूजिक बजाएंगे और
हाँ
आपके
हाँ
कमेंट्री के लिए।
जी। ओम शांति। इस शरीर रूपी मोमबत्ती के ऊपर मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जल रही हूं, जग मग रही हूं, मौज आत्मार्थी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश, दिव्यता की रोशनी चारों फैल रही है, मौज आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति के चहुओं सुंदर आभा मंडल, सुंदर दिव्य प्रकाश का औरा अनुभव, भगवान की नजरों में आई हुई भाग्यवान आत्म ज्योति हूं। शरीर तो मेरा वस्त्र है, शरीर तो मेरा साधन है, यह शरीर तो मेरा मकान है, मेरा असली स्वरूप निराकार ज्योति स्वरूप है। मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति इस देह रूपी मोमबत्ती से न्यारी होकर बुद्धि बल से निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा जा, इस विश्व के गोले से पार, चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ती हुई जा रही हूं। ओहो, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच, जहां चारों ओर सफेद सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश, मौज आत्म ज्योति ने दिव्य प्रकाश पुंज का ड्रेस, परिस्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है, और फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे अति मीठे शिव बाबुल भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की सुंदर दृष्टि का आनंद लेते लेते बाबा की बाहों में समा गया। अभी अभी फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा निराकारी दुनिया की ओर बुद्धि बल से उड़ती हुई जा ओहो निराकारी दुनिया में पहुंच गए जहां चारों ओर सुनहरी लागी ला दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति ही शांति परम शांति है। कितना प्यारा है यह मेरा स्वीट साइलेंस हो ओहो, मेरे प्राणों से भी प्यारे मेरे प्राण पिता सत्यम शिवम सुंदरम शिव बाबुल मोज आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान। चारो सुनहरी लाल नीला मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति बाबा की सुंदर छवि को निहार बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। मेरे दिल के दुनिया में मेरे दिलाराम मेरे दिलवर बाबा ही बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर है। ज्ञान सूर्य शिव पिता से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की वर्षा मोस आत्म ज्योति पर हो रही है होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य सुपिता से अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूँ करती ही जा रही हूं। योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप भस्म हो रहे। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट अनुभव कर रही हूं। इतने विशाल परम धाम में मैं आत्म ज्योति ज्योति सागर शिव पिता से महामिलन मना रही हूं। ज्ञान सूर्य स्नान कर रही हूं, शक्तियों से भरपूर रही हूं। मेरी मन और बुद्धि भी विकर्मों के भस्म होने से स्वच्छ होती जा रही है। शक्तियों से भरपूर आत्मा पुनः निराकारी दुनिया से वापी बुद्धि बल से वाया सूक्ष्मवता आ रही हूँ साकारी दुनिया की ओर वापिस आ। साकारी शरीर रूपी चैतन्य मोमबत्ती के ऊपर मैं आत्म ज्योति विराजमान हो चुकी हूँ। मोहसा शक्तिशाली आत्म ज्योति से दिव्यता का प्रकाश शक्तियों का सकाचार फैल रहा है। वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु हैं, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी निराकार ज्योति बिंदु निराकार ज्योति बिंदु निराकार ज्योति बिंदु। ओम शांति शांति शांति।